ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला अंतिम तीन श्लोक। अर्जुन कह रहा है, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्युत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी ही होगा। संजय उवाच। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महत पापम कृतम होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए कल्याणकारक ही होगा। इस प्रकार संजय कह रहे हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो यहाँ पर पहला अध्याय पूरा होता है, जिसमें 47 श्लोक है और इसका नाम है प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम। में साइको एनालिसिस के फादर पिता सिगमंड फ्रॉइड या फ्रायड ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था मॉर्निंग एंड मेलनकोलिया। मॉर्न अर्थात दुख करना, विलाप करना, संताप करना, विषाद। एंड मेलनकोलिया, मेलनकोलिया अर्थात उदासी, जिसको वर्तमान मनोविज्ञान उदासी डिप्रेशन कहता है, उसी को पहले जमाने में मेलनकोलिया कहा जाता था। तो दो शब्दों का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था, एक मॉर्निंग और दूसरा मेलनकोलिया। उसने कहा था मॉर्निंग ये क्षणिक है, चेतन मन के तल पर होता है, व्यक्ति के जीवन में दुख आता है वो विषाद करता है और उससे रिकवर हो जाता है, पर डिप्रेशन जो है, मेलनकोलिया जो है, वो अवचेतन के तल पर होता है, जिससे व्यक्ति दुख से उभर ही नहीं पाता। और वर्तमान मनोविज्ञान या साइकायट्री कहती है कि डिप्रेशन अर्थात अनहिडोनिया, अनहिडोनिया अर्थात टोटल लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जीवन के प्रति सुख का अभाव, लॉस ऑफ हैप्पीनेस अर्थात डिप्रेशन। ये दो हफ्ता तक अगर रहे तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है, ये मेजर डिप्रेशन की परिभाषा है। यहां पर अर्जुन को एक्यूट डिप्रेशन हुआ है, अचानक हुआ विषाद, और इस डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। अर्जुन के डिप्रेशन के, क्यों अचानक वो उदास हो गया, क्यों अचानक शोक ने उसे घेर लिया, क्यों अचानक उसके हाथ कपने लगे, क्यों अचानक उसका दिल कहने लगा कि नहीं ये युद्ध अब मैं नहीं करूंगा। क्यों वो अचानक जो कल इतनी सारी बातें हमने सुनी रैशनलाइज करने लगा, जिसको वो सत्य समझता है उसी को वो बताने लगा कि ये कर लू तो ये हो जाएगा। क्यों अचानक उसे वर्ण संकर की बात याद आ गई क्रॉस ब्रीडिंग की, और क्यों अचानक उसको पितरों के तर्पण और श्राद्ध की बात याद आ गई, और क्यों अचानक वो अपने पलायन को एक धार्मिक होने का नाम देने लगा। क्यों ये उसके साथ सारा कुछ हुआ, और अंत में क्या किया उसने, अपने बाण को धनुष को छोड़ दिया, उदासीन हो गया और रथ के पीछे जाके बैठ गया। शरीर के तल पर और मन के तल पर, शरीर के तल पर उसे कोई बुखार नहीं है, कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, परंतु फिर भी मन से सारा धीरज सारा साहस शौर्य वीरता लुप्त हो गई और अचानक डिप्रेशन में चला गया। ये एक एक्यूट साइकाइट्रिक इलनेस, एकदम से ग्रसित हो गया वो मानसिक रोग से, कि जिसमें बाहर का सब ठीक है, धनुष खड़ा है, अभी तक युद्ध करने के लिए लालायित था, और अचानक ऐसा हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया, विषाद में चला गया, शोक में चला गया। तो इससे पहले कि हम गीता की शुरुआत करें, या भगवान अब अर्जुन को सिखाए, फर्स्ट साइको एनालिसिस है ये, फर्स्ट साइकियाट्रिक इंटरवेंशन, फर्स्ट स्पिरिचुअल काउंसिलिंग कहा जाता है इसको, जो हुआ अर्जुन के साथ भगवान ने जो किया। इससे पहले कि हम उसकी चर्चा अगले एपिसोड से करेंगे, ये जानना कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं, जैसे कि एक प्रश्न कि अर्जुन को ये डिप्रेशन ये विषाद क्यों हुआ। अर्जुन का जो डिप्रेशन है अचानक से आ गया, उदासी जो छा गई उसके मन पर, सब कुछ छोड़ गया और पीछे जाके बैठ गया रथ के, बोल रहा है मेरे से ये युद्ध नहीं होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। उसके शरीर में चेंजेस होने लगे, तो ऐसे वो कौन से कारण है जिस वजह से अर्जुन एक्यूट डिप्रेशन की स्थिति में चला गया। सबसे पहला कारण तो है अज्ञान। सारी गीता इसी अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न है। अर्जुन का अज्ञान है वो। दूसरा एक कारण है उसका देहभान। वो ये सोच रहा है कि मैं भी देह हूं और ये सारे भी देह है। तीसरा कारण है उसका कर्ता भाव, वो सोच रहा है मैं कर रहा हूं। चौथा कारण है उसका मोह, और ये सबसे मुख्य कारण है। वो अपने स्वजनों को देखकर, गुरुओं को देखता है, बड़ों को देखता है, और उनसे उसका जो मोह है वो अचानक प्रकट होता है। सोचता है कि ये मेरे इतने आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है, मैं इनके प्रति कैसे युद्ध करूं, और इस युद्ध में जीतने के लिए मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, और मैं भी कितना लालची हूं, कितना स्वार्थी हूं कि क्षणिक ये संसार के भूमि के टुकड़े के लिए और सुखों के लिए अपने स्वजनों को मार रहा हूं। और ये भी सोचता है कि ये कितने भी शायद पापी हो, धृतराष्ट्र के पुत्र पर है तो मेरे ही भाई, तो उसका मोह जागृत हो जाता है। वो एक कारण है उसके डिप्रेशन का। अगला उसका अनिर्णय, इनडिसीजन। वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। अर्जुन की तुलना हमेशा शेक्सपियर के हेमलेट के साथ की जाती है। शेक्सपियर का हेमलेट टू बी और नॉट टू बी इस प्रश्न के द्वंद में रहता है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, अनिर्णय, इनडिसीजन। व्यक्ति डिसीजन ही नहीं ले पाता जीवन में, करना क्या है नहीं करना क्या है। जैसे ही हेमलेट देखता है एक बार कि उसके पिता के, उसके मृत पिता की प्रेत आत्मा उसके सामने हाजिर हुई है, और वो प्रेत आत्मा कहती है कि उसका जो अंकल है जो कि उसके पिता के भाई, क्योंकि हेमलेट को एकदम आश्चर्य होता है कि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, उसके पिता का भाई अचानक राजा बन रहा है, और उसके पिता का भाई उसकी माँ के साथ तुरंत शादी कर रहा है। उसको ये सब देखकर आश्चर्य होता है, ये हुआ क्या अचानक, और एक दिन अचानक हैमलेट के सामने उसके पिता का प्रेत आत्मा आती है और कहती है कि मेरे भाई ने ही मुझे मारा और उसमें तेरी मां भी मिली हुई थी। और फिर वो षड्यंत्र करता है, कभी कभी पागल जैसा व्यवहार करता है ताकि लोग समझे कि ये पागल है और उस पागलपन की अवस्था में अपनी मां के और अपने चाचा को मारने का षड्यंत्र करता है। क्योंकि पिता बार बार आकर उसको कहते हैं कि, परंतु उसकी अपनी एक दुविधा होती है अंदर, टू बी और नॉट टू बी, मारू या नहीं मारू, करू कि नहीं करू, एक इमोशनल टर्मोइल, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध ट्रेजिडी में से हैमलेट एक ट्रेजिडी है, उसमें हैमलेट की मनस्थिति और अर्जुन की मनस्थिति पर रिसर्च हुए है कि दोनों की एक ही स्थिति है, एक ही धर्म युद्ध है, जो अर्जुन को अचानक यहां पर अनिर्णय की अवस्था आ गई है, अनिर्णीत है, वो इनडिसिसिव है, समझ ही नहीं आ रहा है उसको करूं या नहीं करूं। वो दलीलें दे रहा है कि अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, स्त्री दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर बढ़ जाएगा, संतति का क्या होगा, पूर्वजों का क्या होगा। और दूसरी तरफ ये भी कहता है मैं भी कितना स्वार्थी कि मैं अपने स्वजनों को मार रहा हूं और वो भूमि के खातिर, अल्पकालीन सुख के लिए, ये या वो, ये या वो, टू बी और नॉट टू बी, ये द्वंद है हैमलेट का, इमोशनल टर्मोइल कहते हैं इसे, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। और हर मनुष्य को ऐसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से कई बार गुजरना पड़ता है जीवन में, धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है, करूं कि नहीं करूं, और जब भी अनिर्णय की अवस्था आएगी तब तब व्यक्ति दुख में, विषाद में, डिप्रेशन में अंदर घुस जाएगा। ये डिप्रेशन तभी ठीक होगा जब कुछ अभूतपूर्व घटित होगा। हम पढ़ रहे थे एक ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री में, अभी अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2014 में, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री में, उसका टॉपिक था अर्जुन एंड जॉब। जॉब एक कैरेक्टर है बाइबल का, डिप्रेशन रिलीव बाय सबमिशन टू गॉड, साइकियाट्री एंड सेक्रेट टेस्ट। ये जॉन स्कॉट प्रिंस और रसेल गार्डनर का लिखा हुआ ये आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि अर्जुन की इतनी बैड शेप में है, उसका डिप्रेशन ठीक होता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण बार बार उसको काउंसिलिंग करते जा रहे, परंतु वो प्रश्न पूछते ही जा रहा है, पूछते ही जा रहा है, पूछते बार बार वही प्रश्न पूछता है, और अर्जुन, कृष्ण उसको एक बार भी डांटते नहीं, ये तो मैंने बता दिया, ऐसा भी नहीं करते। 18 अध्याय खाली प्रश्न ही पूछते रहता है और घूम घूम के वहीं पर आता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर वो ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर स्थित प्रज्ञ योगी क्या निशानी है, फिर तुमने कहा कि भाई संन्यास योग और कर्म योग दो है और कर्म योग श्रेष्ठ है, और फिर तुम ये भी कहते हो कि योगी ही श्रेष्ठ है, तो तुम मुझे योगी बनने से क्यों नहीं, क्यों रोकते हो, मैं तो योगी ही बनना चाहता हूँ, मुझे तो जाकर जंगलों में तपस्या करनी है, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों कहा, तुम ये क्यों कहते हो, तुम वो क्यों कहते हो। इस आर्टिकल में बताया गया कि अर्जुन के ये सारे प्रश्न जो है तब तक ठीक नहीं हुए जब तक उसने अपना रूप नहीं बता प्रकट किया, और अर्जुन सबमिट नहीं हो गया, समर्पण नहीं कर दिया, सरेंडर नहीं हो गया बुद्धि से, तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ। वैसे ही बाइबल में इन द बुक ऑफ जॉब, प्रोटागोनिस्ट जो जॉब है, वो जॉब भी डिप्रेशन में है, क्योंकि उसके 10 बच्चे सैटन ने, शैतान ने मार दिए है, तो वो भी भगवान को दोषी ठहरा रहा है। तो भगवान फिर प्रकट होते हैं, उससे बात करते हैं, जॉब के साथ, जॉब व्यक्ति का नाम है, उसके साथ बात करते हैं, उसके बाद में वो समर्पण होता है, और जैसे समर्पण होता है उसके सारे बच्चे जीवित हो जाते हैं। तो ये दो स्टोरीज को दिखाया गया कि ये जो पैनिक एंजाइटी अटैक अर्जुन को हुआ अचानक से, वो कैसे ठीक हुआ, अचानक ये डिप्रेशन कहां से आ गया अर्जुन को। तो अर्जुन के डिप्रेशन का एक कारण है अनिर्णय। सिगमंड मार्टिन सेलिगमन, पॉजिटिव साइकोलॉजी के पितामह उसको कहा जाता है, अभी भी है वो, उसने कहा है डिप्रेशन इज द कॉमन कोल्ड ऑफ साइकोपैथोलॉजी। कॉमन कोल्ड अर्थात सर्दी खांसी होती रहती ना बार बार, वैसे ही साइकोपैथोलॉजी है, साइको ब्रेन और पैथोलॉजी विकृत का जो विज्ञान है उसका ये कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी है, बार 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 होते रहता है व्यक्तियों को। तो अर्जुन का एक कारण था अनिर्णय। अगला कारण है संशय, उसे संशय आता है और ये संशय की अवस्था उसको कहां घुसा घसीट कर लेके जाती है, डिप्रेशन की ओर ले जाती है। एक कारण है उसकी कायरता, कावर्डनेस, वो भी उसे डिप्रेशन की ओर ले जाती है। ऐसे ये सात कारण है। सबसे पहला बताया उसका अज्ञान। अभी जो अगला अध्याय चालू होगा वहां पर भगवान उसको यहीं से चालू करता है, तो बातें तो वीरो जैसी करता है पर कर्म तेरे जो है वो कायरों जैसे है, क्योंकि अब तक उसने जितनी दलीलें दी, जितना रैशनलाइजेशन किया, वो सारे तर्कों को एकदम खंडित कर किया जाता है। एक एक तर्क को चुन चुन कर भगवान उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो एक तो कहा कि उसका अज्ञान, उसी के साथ मिला वो उसका कर्ता भाव, वो सोच रहा है मैं कर रहा हूं, मेरे कारण ये सब हो रहा है और मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे कैसे करूं, मैं वैसे करूंगा। उसका मोह, मुख्य कारण तो उसका मोह है। जहां जहां मोह होगा वो मोह अंततोगत्वा दुख को जन्म देगा, डिप्रेशन की ओर ले जाएगा व्यक्ति को। उसका मोह, उसका ज्ञान, उसका देहभान, उसका कर्ता भाव, उसका संशय, उसका कायरपन, उसका अनिर्णय की अवस्था, ये कुछ कारण है जिसके वजह से अर्जुन अचानक शोक युक्त हो गया, दुख में डूब गया। ये तो एक प्रश्न हुआ कि अर्जुन अचानक उदास क्यों हो गया। दूसरा एक प्रश्न है कि वहां पर बहुत सारे दूसरे योद्धा भी थे, उनके अंदर उदासी क्यों नहीं आई, दुर्योधन की उदास नहीं हुआ, इधर दूसरे भी थे अर्जुन के साथ पांडव, उनके साथ उदासी क्यों नहीं आई, अर्जुन ही उदास क्यों हुआ? वो थोड़ा ज्यादा समझदार था। एक ये भी प्रश्न है कि अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई गई, क्या उस समय बड़े बड़े पंडित, विद्वान, योगी, महात्मा, तपस्वी, ऋषि, मुनि, सप्तऋषि नहीं थे? ये अर्जुन को ही चुना गया क्यों, अर्जुन को ही क्यों चुना गया? क्या कारण है कि जिसमें भगवान ने ऐसा अर्जुन में क्या देखा कि जो वो भगवान ने अर्जुन को चुन लिया? क्या सोचते हैं आप? उसका, उसके पास प्रश्न थे, पहले कहां थे? वो तो सबसे ज्यादा लालायित था युद्ध करने के लिए। अच्छा, भगवान को अपनी बात मानने वाले तुम ही मिले, इसके लिए तुमको ही सुनाएगा, बाकी तो सुनने को तैयार ही नहीं होते। पवित्रता की बात करो तो वायरे हो जाते हैं, उधर चिन्मयानंद के पास बहुत जाते हैं बॉम्बे में, कल सुना इधर कहो तो वायरे हो जाते हैं। तो सखो भक्तों सी सखा चेती, एक जगह आगे है कि अर्जुन ये मैं ज्ञान तुझे इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो तो मेरे सखा भी हो, तुम मुझे मानने वाले हो, तुम्हारा मुझ में अनन्य प्रेम है, ये एक कारण है, और तुम मेरे मित्र भी हो इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो भगवान अपना ज्ञान किनको सुनाते हैं? जो उसके मित्र है और जो उसका मानने वाले है उन्हीं को सुनाता है, बाकियों को नहीं सुनाता है। चलो फिर भी अर्जुन को ही क्यों सुनाया और बाकियों को दुख क्यों नहीं हुआ, ये एक दूसरा प्रश्न है। उधर धर्मराज है, भीम है, नकुल, सहदेव तो ठीक है, और भी अच्छे अच्छे, महारथी है, इधर भी बहुत सारे, उनको नहीं हुआ, अर्जुन को ही दुख क्यों हुआ? अर्जुन विषाद योग क्यों? अर्जुन सबसे, इसके पहले भी बताया था, तीन अवस्थाएं हैं यहाँ पर चेतना की। एक है विचारहीनता, एक है विचार, और एक है निर्विचार। दुर्योधन जो है वो विचारहीनता की अवस्था में है, भीम और दुर्योधन। कम बुद्धि वाले जो है वो विचारहीनता की अवस्था में है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सोच ही नहीं है ये, उनको तो बस लड़ना है, इधर भी लड़ना है और भीम को भी लड़ना है। उसने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं पीऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं, और जब तक दुर्योधन की जंगा नहीं तोड़ूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। तो ये तो उसकी प्रतिज्ञा है, ये इधर का सोच है। और दुर्योधन भी कुछ इसी तरह का है, प्रतिशोध से भरा हुआ, प्रतिहिंसा से भरा हुआ। तो दोनों ही प्रतिहिंसा का भाव दोनों में है। तो ये जो अवस्था है यहां पर सोच विचार नहीं चलता है ज्यादा। सोच विचार कब चलता है? ये अज्ञान की अवस्था है, वो तो ज्ञान में आने के बाद द्वंद्व चालू होते हैं, महाभारत का युद्ध। तो अर्जुन वो अवस्था है जब वो थोड़ा विचारपूर्ण व्यक्ति है, वो तर्क करता है, लॉजिशियन है, सोच सकता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ये बीच की अवस्था है। और उसके आगे की अवस्था श्री कृष्ण की अवस्था है, वो है निर्विचार की अवस्था। यहां पर युद्ध करने में कोई दुख नहीं है क्योंकि ये साक्षी भाव की अवस्था है। यहां कर्म किए जा रहे हैं परंतु कर्म में लिप्त नहीं है कोई। नीचे की जो अवस्था है विचारहीनता की है, ये निर्विचार की है। विचारहीनता और निर्विचार में अंतर है, थॉटलेसनेस की अवस्था है और ये बियॉन्ड थॉट की अवस्था है। यहां पर थॉट का ट्रांसेंडेंस हुआ है, थॉट से परे जा चुकी है। तो यहां पर द्वंद नहीं है, यहां पर द्वंद है। इसके लिए ऐसा जो व्यक्ति है वो एक ही अर्जुन ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां पर बाकी जो भी है, दृष्टद्युम्न है, द्रुपद है, द्रौपदी के पिता, द्रौपदी का भाई, सब प्रतिशोध से भरे हुए है। इनको प्रतिशोध लेना है, हमारी मेरी बहन के साथ और मेरी बेटी के साथ ये किया उन्होंने, ये भाव भरा हुआ है, बदले की भावना है। परंतु अर्जुन अभी तक था, परंतु वो विचारवान है। और अर्जुन ये भी सोच पा रहा है कि यही तो थे, यहां पर धर्म का जन्म हो रहा है उसके हृदय में, ऐसा दिखाई दे रहा है परंतु वास्तविक धर्म नहीं है वो, क्षणिक दया और करुणा और प्रेम जागृत हो रहा है। मैं कैसे मारूं अपने पितामह को, इन्होंने तो मुझे इतना पाला, मैं अपने गुरु को मार दूं और वो राज्य के लिए, और चलो ये मेरे इतने दुष्ट भाई है पर है तो मेरे ही भाई ना, दे दूंगा इनको राज्य, नहीं चाहिए मुझे इनका राज्य, वन में जाके तपस्या करूंगा मैं, यही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन एक अवस्था है जहां पर द्वंद होता है, और मानवता की मानव की जो अवस्था है वो अर्जुन की ही अवस्था है। अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं है, हर एक मनुष्य अर्जुन है जो कि सोचता है। हाँ, वो जो विचारहीनता में चले गए पाप कर करके, पाप कर करके, पाप कर करके, सोच ही बंद हो गया, विवेक का खून कर दिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्रीमत का उल्लंघन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो बीच वाले हैं उनको ज्यादा दुख होता है। अमृत वेला उठो, लेट उठो तो दुख, मुरली चिंतन नहीं करो, नहीं जाओ तो दुख होता है। बाकी जो कुछ है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एक कैटेगरी है विचारहीनता वालों की। ब्राह्मण परिवार में भी तीन अवस्था है, तीन प्रकार के है, लोग है। एक है विचारहीन, जिन्होंने ये तो छोड़ ही दिया, ये श्रीमद विमत तो जिनको करना है करे, वो अब कंफर्टेबल हो गए हैं, अपना एक सेफ्टी का सर्कल बना रखा है, अपनी जड़ें मजबूत कर ली है यज्ञ में, कि जहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है उनको, वो अपने इसमें मस्त है और उसमें सुखी है, उसमें सुखी भी है, ये दूसरी बात है। ज्ञान योग से कोई लेना देना नहीं है और उनका सुख ही उसमें है, खुश भी है, सुख भी उसमें ही है, वो एकदम संतुष्ट है उसमें। इसके लिए वो उसमें खुश है, और उनको थोड़ा अल्पकाल का नाम मान मिल जाता है, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं तो मिल भी जाता है, नहीं मिल जाता ही है, क्योंकि सारा प्रयत्न ही उसके लिए। ज्ञान योग जहां छूट गया वहां पर ये नाम मान की थोड़ी बहुत इच्छाएं रहती है और उसे वो पूर्ण करने की इच्छा रखता है और मिल जाता है। पर ये वो अवस्था है विचारहीनता की, जहां पर मुरली अमृत वेला कभी नहीं उठे तो भी चलता है, मुरली नहीं सुना तो भी चलता है, श्रीमद का कोई उल्लंघन कर दिया तो भी थोड़ा बहुत चली जाता है, कुछ फर्क नहीं करता। नुमा शाम का योग तो पता नहीं लास्ट कब किया था, उनको ढूंढना पड़ेगा। और चार्ट से तो बिल्कुल ही दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ज्ञान योग की क्लासेस जिसको करना है करे, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसी क्लासेस विशेष से, ना तो सुनने से लेना देना ना तो करने से, तो दो बहुत ही दूर, टाइम वेस्ट, कुछ नहीं होने वाला है भाषण झाड़ने से। जिसको बनना है बने, फरिश्ता फरिश्ता बनना है बनो, बाप समान बनना इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये वो कैटेगरी है सबसे निचली। बीच की कैटेगरी है, यहां है पुरुषार्थी, ये है अर्जुन, यहां पर ही द्वंद्व होता है। क्योंकि ये जो पुरुषार्थी है, जो अवेयर है पुरुषार्थ के बारे में, श्रीमत के बारे में, उनको ही सबसे ज्यादा कठिनाई है। उनके हृदय में ही कुछ कुछ होते रहता है, अंदर से दुख होते रहता है, दर्द होते रहता है, और फिर कहते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अमृत वेला ढंग से नहीं होता है, मुरली से कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी खुशी नहीं है जीवन में, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये भी पता है कि ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और बार बार खंडित हो रहा है, पता है पवित्रता की धारणा रहनी चाहिए परंतु दृष्टिवृत्ति ऐसी हो रही है, चलायमान संडे की मुरली, और ये भी पता है कि क्या हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। तो द्वंद्व की जो अवस्था है वो अर्जुन की अवस्था है। हाँ, फिर कुछ दूसरी आत्माएं भी है, ये बहुत कम है, गिनी चुनी, कृष्ण की अवस्था वाली, निर्विचार साक्षी, संपूर्ण खेल को साक्षी, उसके लिए कोई नहीं, वो भी इसलिए भी सुखी है कि देखो ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे, वो उसमें सुखी है, ये भी देखते हुए वो खुश है, और ये पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी थोड़े बहुत कब अप डाउन होते रहता है, ये देखते हुए भी खुश है। उनको यहाँ यज्ञ की किसी हलचल से, संसार की किसी हलचल से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सब एंजॉय करते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं उनका पता है ये संगम युग चल हुए, और ये सतयुग में भी, सतयुग से भी श्रेष्ठ जन्म ये है, यहाँ पर हम दुखी कैसे हो, यहाँ जो हो रहा है एंजॉय करते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, उनका पुरुषार्थ इतना अधिक है कि उस पुरुषार्थ के आधार पर ही, पुरुषार्थ करते करते ही इस परम अवस्था को प्राप्त हुई है। उनकी अवस्था भीम और दुर्योधन जैसी नहीं है, ये संकल्प रहित अवस्था नहीं है, संकल्पों से परे की अवस्था है, मतलब ज्ञान के ही चिंतन, वो सेकंड स्टेज से गुजरे, पहले फर्स्ट स्टेज में थे, फर्स्ट से सेकंड स्टेज में उतरे और लंबा समय तक इसमें रहे, वो परसिस्ट किए, हार नहीं मानी, करते रहे पुरुषार्थ, करते रहे मुरलियों का अध्ययन करते रहे, तपस्या करते रहे एकांत में, तब आत्मा अभिमानी स्थिति, हम अमृत वेला हो नहीं रहा फिर भी कर रहे, लंबा समय तक करते 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 उस अवस्था को प्राप्त हुए, और बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चोट खाई है, यहाँ पर भी दुख हुए है, खुद के अनुभव, दूसरों के अनुभव से सीख सीख कर आगे बढ़े है, और फिर इस अवस्था को प्राप्त हुए है कि उनको यहाँ पता चला कि ये सब दुखी होके कोई फायदा नहीं है। देख लिया उन्होंने दुखी होकर, किसी ने कुछ कहा दुखी हो गए, क्या मिला, कुछ भी नहीं, वो इतनी आगे की अवस्था में चले गए और फिर यहां पहुंचे हैं निर्विचार की अवस्था में। कल मैं जगदीश भाई का एक क्लास पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने वर्णन किया है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी एक बार जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि वो सोए थे वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे दो किसान थे, तो रात में नींद लग गई और पैर थोड़े से सामने हो गए, क्योंकि दुबक के बैठे थे पर पैर आगे हुए, तो उसमें से एक किसान कहते हैं पैर ऊपर करो, कब तुम, हाँ ये बूढ़े वगैरह कहते हैं उनको, ओल्ड मैन तो पैर ऊपर करने को कहते हैं, तो वो उठते हैं और फिर पैर ऊपर करते, फिर थोड़े बाद देर बाद फिर नींद लगती है, फिर वो दोनों कुछ कुछ कहते लगते, गाली वगैरह देते हैं उनको, इधर करो उधर करो, फिर वो बेचारे बैठ ही जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वजह से इन लोगों का कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, कोई जनरल कंपार्टमेंट में भीड़ बहुत होती है, तो वो कुछ कहते नहीं उनको और बैठ जाते हैं, पैर नीचे करके बैठे रहते हैं बस। और फिर जहां उतरते हैं वहां पर फिर लोगों का जुलूस, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, तो वो दोनों किसान सोचते हैं पता नहीं किसके लिए महात्मा, और सब लोगों को पता चलता है इस कंपार्टमेंट में, तो भाग भाग के वहां आते। वो दोनों कहते हैं यहाँ महात्मा भीतमा कोई नहीं है, कहाँ जा रहे हो आप लोग। और फिर वो जब दोनों किसान देखते हैं कि वो लोग आए रहे और महात्मा गांधी के गले में हार डालते है, तो वो कहते हैं उनको पश्चाताप होता है कि इतना महान व्यक्ति हमारे साथ रात भर था, तो हम कितना उससे सीख सकते थे पर कुछ भी नहीं सीखा। डिस्टेंस से उसको गालियां दी रात भर, उसको ही सिखा दिया। परंतु ये अवस्था जो थी यहां पर, ये निर्विचार थे, ये अवस्था है निर्विचार की। परंतु हाँ, ये निर्विचार कैसा बना ये व्यक्ति, ये क्यों याद करो अफ्रीका में क्या हुआ था। ये व्यक्ति पहली एकदम अचानक ऐसा नहीं बना, एक अवस्था थी कि जब वो ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, एक अवस्था ऐसी थी जब उसने दिखाया ये देखो मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं नहीं उतरूंगा यहाँ से। एक अवस्था ऐसी थी का उसने सब दलीलें दी कि मैं नहीं उतरने वाला यहाँ से साउथ अफ्रीका में, सेंट कहा पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर, नहीं नहीं कौन सी जगह है जहाँ ये हुआ, जॉन्सबर्ग नहीं, डरबन, डरबन के पास। तो वहां पर उसको उसने क्रोध किया, उसने दिखाया और जब उसने नहीं माना तो उसको धक्के देकर निकाल दिया और उसके सामान भी फेंक दिया, सब फेंक दिया। ये अर्जुन की अवस्था से वो गुजरा है, तब कहीं कृष्ण की अवस्था तक वो पहुंचा है, ऐसे अचानक नहीं हुआ। यहाँ अगर वही वाला पुराना वाला मोहनदास करमचंद होता तो वो उनको सिखा देता था, तुमको किससे बात कर रहे हो तुमको पता नहीं, लोग मुझे महात्मा कहते हैं। परंतु वो उससे गुजर चुका था। तो इस पुरुषार्थ की अवस्था से गुजर कर ही व्यक्ति निर्विचार की अवस्था तक पहुंचता है, ये एक बात। अभी ब्राह्मण परिवार में ये तीन प्रश्न थे, अर्जुन उदास क्यों हुआ, अर्जुन ही उदास क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुए, और अर्जुन क्यों को ही क्यों चुना गया। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण परिवार में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, बीच वाले, जो नीचे वाले नहीं, वो तो कभी उदास होते नहीं है, जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको कभी उदासी नहीं होती है, वो दूसरों को उदास करते हैं। उनको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो तो बस आराम से बैठकर व्यर्थ से गप्पे, वो क्या कहते हैं उसको, सुनहरी टोली, वो बैठकर चर्चा करते हैं व्यर्थ की बातें, वो एक ग्रुप है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है पुरुषार्थ से लेना देना नहीं, मुरली ज्ञान योग ये तो बहुत पीछे छूट गया है, पता नहीं कहाँ छूट गया है। जैसे एक बहन ने अनुभव कभी सुनाया था ना, मुरली हाँ जब हम ज्ञान में आए थे तब मुरली सुनते थे। जैसे बहुत बचपनों की बातें है वो, जब नए नए थे ना तब तो बहुत सुनते थे, अभी जैसे बहुत आगे निकल गए हैं अभी। तो ये वहां द्वंद नहीं है। अब जो बीच वाली जो अवस्था है, जो तीव्र पुरुषार्थी है आत्माएं, उनमें उदासी के, डिप्रेशन के, विषाद के क्या कारण है, और जो ऊंची अवस्था है दादियों की अवस्था, वो है कृष्ण की अवस्था निर्विचार। दादी को कोई संकल्प नहीं है, जानकी दादी को कोई संकल्प नहीं है कहां क्या हो रहा है, या मैं ये हूं और मेरा ऐसा है, कुछ नहीं, कोई भी संकल्प नहीं, निर्संकल्प की अवस्था में है, वो सबसे ऊंची अवस्था है। अब ये जो बीच वाली जो आत्मा है, वहां उदासी के क्या कारण है, 10 कारण बताओ। कुछ करने की इच्छा है पर हो नहीं रहा है, चाहते हैं कि ऐसा पावरफुल अमृत पहला करूं, ऐसा पावरफुल अमृत पहला करूं, पर उठते ही देखते हैं 4:15 दुख, उठते ही देखते हैं 4 बज गया दुख, उठते ही देखते हैं देखा और गाड़ी निकल रही है हमारे सामने हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल वालों के लिए आज गया कैसे जाए, अब गाड़ी निकल गई 3:30 की, दुख। पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं परंतु उदासी, हाँ एकदम अमृत वेला उठे और फिर नींद आने लगी, और नींद आने लगी तो अंदर विषाद दुख उत्पन्न होता है, देखो आज भी नींद आ गई जबकि सारी तैयारियां की थी, सारा चार्ट बिट सब कुछ किया था फिर भी नींद। तो जितना ऊंचा लक्ष्य रखा है, इसके लिए डिप्रेशन मैनेजमेंट में एक टेक्निक है कि इतना ऊंचा भी लक्ष्य मत रख दो, छोटे छोटे गोल रखो, फिजिबल, जो कि प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, प्लॉजिबल हो, जो कर सके, प्रैग्मैटिक, जिसको कहते हैं प्रैग्मैटिक गोल्स, नॉट प्लॉजिबल, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक अर्थात जो आप कर सको, प्रैग्मैटिज्म, व्यवहारिकता कितनी है उसमें। ऐसा नहीं सर अभी कल से मैं, आज 18 जनवरी को इतने आंसू आ गए ना, अभी कल से मैं सीधा 2 बजे उठूंगा, और उठ भी गए, और 2 बजे उठे और बाबा की कुटिया में कभी इधर गिर रहे कभी उधर गिर रहे, कैसी दयनीय दशा है जब एक महान योगी आत्मा नींद में ही अपना अमृत वेला करती है, फिर भी जिद और हट बहुत है कि हम बैठे रहेंगे, नींद आ रही है पर उठने को तैयार नहीं है। 10 लोगों ने उठाया, भाई उठो तुम नींद कर रहे हो, परंतु नहीं उठेंगे, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, कितना बड़ा बोझ है, परंतु उठने को तैयार नहीं। अरे नींद आती है तो क्यों बैठ रहे हो, आंखें बंद हो रही है, जब जब आंखें बंद हो रही है समझ रहा योग नहीं है, आंखें अर्थात योग खुली चाहिए। कोई अगर ऐसे आंखें बंद करके बैठा है तो समझ लेना ये नींद है, नींद का नशा है, अपने आप को स्व आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ इम्पोजिशन, सेल्फ लाइंग कर रहा है। और नींद सबको आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। मैंने अपने आप को देखा है, अगर मेरी 3 घंटे से कम नींद हो गई तो नींद तो आना ही है योग में। अगर रात में कोई एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया और उसके कॉल चालू रहते हैं, अभी 11 बजे एक कॉल आया, फिर एक बजे कॉल आया, फिर 2 बजे उसके ब्लड रिपोर्ट्स आया, फिर 3 बजे मैसेज आया कि अभी उसको ये हो रहा है, और फिर हम उठ के आ रहे हैं यहाँ पर, पूरी रात मैसेजेस और हॉस्पिटल के आईसीयू से कॉल में गई, और उसके बाद में हम सोचते कि हमारा पावरफुल हो, नहीं हो सकता है, सबको आती है, अच्छी नींद चाहिए। अगर डिस्टर्ब हो रहा है, पंक्चर्ड हो रही है नींद, तो कहां से। और परंतु ये हट और ये अहंकार ही है कि हम बैठे रहते हैं। योग अर्थात आंखें संपूर्ण खुली, अनुभव। कोई अगर नींद में बैठा है तो यहां पर भी उसको अंदर से तो दूसरों को तो दिखा रहा है बैठा हुआ है, परंतु विषाद दुख होगा, डिप्रेशन में जाएगी आत्मा अंदर, या ऊपर से एक दिखावा है कि हम भाई अमृत वेला कर रहे हैं, शाम का योग भी कर रहे हैं, और अनुभव कुछ नहीं, जीरो। तो हिपोक्रेसी, उठो और चलना चालू करो, उठो और कुछ पढ़ो, उठो और क्लास सुनो, अगर नींद ही आ रही है तो क्या करो, बाबा के महावाक्य सुनो अमृत वेला, पर बैठे नहीं रहो वहां पर आंखें बंद करके। एक तो ये कि लक्ष्य, छोटा लक्ष्य रखो, लक्ष्य रखो फिर 4 बजे उठने का, अगर नहीं उठना होता है तो 4 बजे उठो, अपने कमरे में बैठ के योग करो, या चलते फिरते योग करो बस। यहां अगर आते हो तो इधर बाहर घूमो, उधर बाबा के कमरे, बाबा की कुटिया में, हिस्ट्री हॉल तो स्लीपिंग रूम बिल्कुल बनाना नहीं उसको, इतनी हीटर वीटर है वहां पे उसको, मतलब योग के समय नहीं, दूसरे समय वहां नींद करते हैं, हमने देखा कई बार, योग के समय नहीं दूसरे समय, जैसे अभी पौने के भाव मुरली के बाद 6:45 से लेके तो 7 बजे तक का जो टाइम है, या दिन भर में, ये काम के लिए थोड़ी ना हिस्ट्री वाले, स्लीपिंग रूम, बेडरूम, बाबा के कमरे को तो छोड़ दो कम से कम। हाँ, एक तो ये कारण, दूसरा डिप्रेशन, उदासी का कारण श्रेष्ठ प्रार्थनाओं में। लक्ष्य इतना ऊंचा, लक्ष्य छोटा रखो, छोटा अर्थात छोटा, शॉर्ट टर्म रखो, प्रैक्टिकल रखो, जो किया जा सके, नहीं होता है ना, धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ, 4 बजे उठो, फिर 4:45 उठो, फिर कुछ 15-20 दिन के बाद और पीछे जाओ, 5-5 मिनट पीछे जाओ, एकदम नहीं पीछे जाओ। फिर कंपैरिजन करते हैं, ये लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये लोग इतना योग करते हैं, मैं भी क्या कम हूं क्या, तो भी डिप्रेशन आता है। ये एक्चुअली डिप्रेशन का ही मैनिफेस्टेशन है, बाहर है अंदर से डिप्रेशन, जो व्यक्ति रैशनलाइज करके ढक रहा है उसको, ये सब करके बाहर का। तो कंपैरिजन, जेलसी, उसके बाद दूसरे सफल, असफलता का भय कि हमने बहुत किया परंतु नहीं हो रहा है, तो अभी दिखावा करो, ये क्या है दिखावा, हिपोक्रेसी, डिसेप्शन, एग्जीबिशन, आडंबर, दंभ, ये कारण है। और डिप्रेशन, वो मेरे से कॉम्पिटिटिव नेचर, संस्कार अपने अंदर के, इतना सब कर लिया फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर दूसरों को ये बताना भी चाहते कि मेरा संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक अपने आप में एक ऐसा जाल क्रिएट करता है व्यक्ति और उसमें फंस जाता है। उसको इस जाल को तोड़ने के लिए एक जबरदस्त ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए जैसे कहा जाता है ना, भगवान क्या करते हैं, सद्गुरु का काम क्या है, वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते बैठता है, तुम्हारे सारे सिद्धांतों को तोड़ देता है। अभी तक जो जो सोच रहे थे ये पुरुषार्थ है, वो सारी धारणाएं अवधारणाएं पुरुषार्थ की जो बातें मन में जो कॉन्सेप्ट थे वो एक एक करके सबका खंडन कर देता है। ये है गुरु का काम, वही भगवान करता है, वो कभी ये नहीं करता है, वो सारे तोड़ताड़ कर देता है तुम्हारा। जाने दो डिप्रेशन में, क्योंकि इसका नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। ये 18 अध्याय जो है ना, संपूर्णता के अध्याय है। सबसे पहला अध्याय विषाद उत्पन्न होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ना ये सब गलत है, मैं ये जो कर रहा हूं ना ये सब, ये योग की जो मेरी विधि है रॉन्ग है, मैं जिस तरह से बैठ के आंख बंद करके योग मेरा चालू है और सोच रहा हूं मैं महान योगी बन गया हूं, छल रहा है खुद को, ये होना चाहिए। उसके बाद दुख आना चाहिए, दुख से पश्चाताप और पश्चाताप से फिर मार्ग निकलेगा। अर्जुन विषाद योग, द योगा ऑफ डिप्रेशन, द योगा ऑफ डिजेक्शन, द अर्जुनास डिस्ट्रेस। ये जो डिस्ट्रेस, डिजेक्शन, डिस्पोंडेंसी, विषाद, दुख, उदासी से ही योग का जन्म होगा, फिर मार्ग निकलेगा। उदास तो होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। किसमें? हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं होती है और वो कर नहीं पाता है। वही जो कर, सोच बहुत ऊंची है पर कर नहीं पा रहा है, बस यही दुख का कारण है उसका। और एक अंडर डिसकनेक्टिविटी है, एक ऊपर हम सुपर कनेक्टेड है वर्ल्ड में, पर अंडर जो है डिसकनेक्टिविटी है, खुद की आत्मा खोई हुई है, क्योंकि एकांत नहीं है, मौन में कभी अध्ययन नहीं कर रहे। एकांत में कितना समय व्यक्ति बिता रहा है? बहुत कम। ये ज्ञान को समझने के लिए एकांत चाहिए, एकांतिक हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति लाइमलाइट में आता है वहां पे एकांत खो जाता है, फिर वो केवल करने के लिए कर रहे हैं, क्लासेस कहो या कुछ भी कहो, और वही वही रिपीटेशन होता है, उसमें मिलता कुछ भी नहीं। इसके लिए एकांत, भीड़ और नाम मान ये सब आ गया तो भी डिप्रेशन होगा। और डिप्रेशन के कारण तो शरीर के कारण, इसमें बहुत सारे, अर्जुन का एक जेनेटिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा डिप्रेस ही थी जब से कर्ण को छोड़ा था उसने, ये एक जेनेटिक कारण भी है। और उसके पिता भी डिप्रेस थे जब सब कर्दम ऋषि ने जब से उसको शाप दिया था, तो ये भी एक जेनेटिक भी कारण हो सकता है अर्जुन का, एंडोजीनियस डिप्रेशन। कुछ कारण होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होते हैं, कुछ हार्मोनल कारण होते हैं, ये सारा ही होता है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, एक तो ड्रग ट्रीटमेंट होता है, एक काउंसिलिंग होता है जो यहां चल रहा है, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT कहते हैं। ये फर्स्ट काउंसिलिंग जो है, फर्स्ट स्पिरिचुअल काउंसिलर है श्री कृष्ण, दिखाया गया है जिसने काउंसिलिंग किया हो सकता है, परंतु फिर भी हम अपने पुरुषार्थ से किसी भी डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। पहले डिप्रेशन का इस WHO का जो थीम था, लेट्स टॉक, वार्तालाप करो कि है, डिस्कस करो कि है भाई, क्या कर सकते हैं, ये छुपाओ नहीं। विदेशी इसके लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं आई एम इन डिप्रेशन, ये 4 गोलियां चालू है, बढ़ाना ही तो बढ़ाओ, ऐसे सीधा बात करते। भारत वाले ऐसे कभी नहीं बात करते, वो स्वीकार कर लेते हैं और ये दवाई भी ले रहे हैं, साथ में काउंसिलिंग भी चालू है और साथ में अपना तीव्र पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, और उससे कई हद तक बाहर निकल चुके हैं, कई हद तक एकदम बाहर है। और पर भारत वाले ऐसा नहीं करते, वो तो मानते ही नहीं पहली बात, उसको जबरदस्ती बताना पड़ता है तुम्हारे रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, तो बोलते नहीं और भी कुछ कराओ, मुझे मानने को ही तैयार नहीं होता है लास्ट तक कि बीमारी शारीरिक है ही नहीं, बीमारी इधर है और वो कभी ठीक नहीं होती है, ढूंढते रहता है डॉक्टर चेंज, डॉक्टर शॉपिंग चालू रहती है, अहमदाबाद, मुंबई, इधर उधर, और फिर ये सब छूट गया तो नया जो भी आया उसको तो पकड़ ही लेते हैं मधुबन के आंगन में, और फिर वो नहीं हुआ तो फिर अलग अलग पैथीज है, फिर वो सुना है वहां केरला में कोई अच्छा है उसके पास जाओ, फिर सुना उधर कोई नेचर क्यूर का अच्छा है फिर वहां जाओ, एक जगह से दूसरी जगह पिलर टू पोस्ट भागते रहता है व्यक्ति, तो ये अवस्था है। तो शरीर के भी कारण है, पर उसको फिर ठीक करो, पहले मानो, एक्सेप्ट, लेट्स टॉक, और फिर उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करो। परंतु उससे तो अच्छा है कि व्यक्ति ने मान लिया और निकलने का प्रयत्न कर रहा है, बजाय उसके कि व्यक्ति दुख में ही है और अपने आप को समझ रहा है सब ठीक चल रहा है। यही राइट है, मैं जो योग कर रहा हूं ना ये राइट है, मैं जो ज्ञान का चिंतन कर रहा हूं ना, चिंतन विंतन कुछ हो नहीं रहा है, वैसे ही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। मुरली खाली सुनना, बैठना, मुरली सुन के हो गया कि चलो काम पूरा हुआ आज का, उसमें क्या था कोई लेना देना नहीं, डायरी में लिख दिया है, पर जीवन में हमने क्या चिंतन किया वो कुछ भी नहीं है। तो ये अवस्था जो है, इससे तो पहले डिप्रेशन आना चाहिए, फिर योग आएगा। तो आज ये पहला अध्याय यहां पूरा हुआ। नेक्स्ट हफ्ते से हम प्रॉपर जो गीता है, जो काउंसलिंग दी गई है, अगले 17 अध्याय उसकी हम शुरुआत करेंगे। ओम शांति।